भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, गुरु तीर्थम परम ज्ञानम अतस तीर्थम न विद्यते, ज्ञान तीर्थम परम तीर्थम ब्रह्म तीर्थ सनातनम। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार, अथवा गाली दे या डांट बतावे, इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है वह तीर्थ कहलाता है। आत्मा नदी भारत पुण्य तीर्थम आत्मा तीर्थम सर्व तीर्थ प्रधानम। राजन, आत्मा रूप नदी परम पावन तीर्थ है, यह सब तीर्थों में प्रधान है। आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन हैं। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है, सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है, ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता। युधिष्ठिर ने कहा, देवश्रेष्ठ भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जो करने में सरल और समस्त पापों का नाश करने वाला हो। भगवान बोले, राजन, पिबेत तु पंच गव्यम यह पौर्णमास्यामु पोष्यतु तस्य नश्यति तत्पापम यत पापम पूर्व संचितम। जो पूर्णिमा को उपवास करके उसके पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं।
पूर्व संचित पाप नष्ट होते ही आनंद उसी समय आने लगेगा। जब भी आनंद आए तो समझो पाप नष्ट हुए और पुण्य का फणगा फूटा है। समझो हमने भगवान को देखा, मंदिर में गए, आनंद आया, अथवा संत को देखा, आनंद आया, अथवा संत ने हमको अंगूठा दिखा दिया तो बोले लो इतने बड़े संतों के अभी भी बच्चा बचकानी नहीं गई, ऐसा तो कोई होता है तो समझो पाप फोर्स कर रहा है। दुख हुआ किसी बात का तो पाप का ही फल है, दुखाकार वृत्ति पैदा कर देगा। अगर यूं दिखा दिया कि देखो कैसे निर्दोष है बालक की, नहीं अभी भी देखो यूं कर रहे हैं हमारी खुशी प्रसन्नता देने के लिए, देखो कैसा गए अंगूठा दिखा दिया मेरे को ऐसा कर दिया, तो जहाँ सुखद वृत्ति पैदा हो वहाँ पुण्य वृत्ति पुण्य का प्रभाव है और जहाँ दुखद वृत्ति पैदा हो वहाँ पाप का प्रभाव है। तो कोई मर जाता है तो बोले हाँ तो मोह तो पाप है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह के कारण रोते दुख होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई और बोले कीर्तन चालू रखो उसका बाद में करेंगे, ऐसे भी है। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया बोले जिंदा है कि मर गया है, तो बोले आप कसेरा जी इतने बड़े सेठ अपने बेटे के लिए ऐसा कैसा बोलते, बोले एक्सीडेंट हुआ है अगर जिंदा है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की व्यवस्था करो, अगर मर गया है तो उसके लिए शमशान की व्यवस्था करवा के आऊं। जय दयाल कसेरा, नारायण 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 नारायण।
नजरे बदली तो नजारे बदले, 15वीं शताब्दी की एक घटना है। बंगाल में गौड़ राज्य के सुल्तान अलाउद्दीन शाह का वजीर बहुत ही वफादार था। वह सौंपा गया हर कार्य बड़ी तत्परता व लगन से करता था। सुल्तान अपने वजीर के काम से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन सुबह सुबह सुल्तान का हुक्म आया कि वजीर तत्काल दरबार में पहुँचे। बारिश के दिन थे, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, आंधी तूफान के साथ धुआंधार वर्षा भी हो रही थी। ऐसी स्थिति में भी वजीर दरबार में हाजिर होने के लिए चल पड़ा। मार्ग में एक भिखारी को उसकी पत्नी कह रही थी कि वह भिक्षा मांगने जाए। भिखारी ने पत्नी से कहा, अरे पगली, कुत्ता या लोमड़ी जैसे प्राणी भी इस वक्त बाहर नहीं निकलते तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, इस समय कोई गुलाम या नौकर जरूर बाहर निकल सकता है। ये शब्द वजीर के कानों में पड़े और हृदय की गहराई तक असर कर गए। वजीर गंभीरता से विचार करने लगा, क्या मैं एक भिखारी या कुत्ते से भी गया बीता हूँ जो पेट पालने के लिए एक गुलाम जैसा दिनहीन जीवन जी रहा हूँ। दुनियावी भोग ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा में फंसकर मैं कितना पराधीन जीवन बिता रहा हूँ। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य इतना तुच्छ जीवन जीना तो हो नहीं सकता। उस वास्तविक उद्देश्य महान उद्देश्य को जाने बिना, उसे हासिल किए बिना मेरा जीवन पशु से भी बदतर है। मैं कैसा मूर्ख हूँ कि अभी तक मैंने शाश्वत वास्तविक मुक्त जीवन की प्राप्ति का कोई यत्न नहीं किया, यत्न तो क्या विचार तक नहीं किया। यदि अभी इसी वक्त मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी क्या गति होगी। इस प्रकार के विचारों में खोए हुए वजीर के पैर वहीं रुक गए। शीतल हवा चल रही थी, फिर भी वजीर का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। शरीर में कंपन होने के साथ ही उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जब मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए धर्माचरण का पुण्य इकट्ठा हो जाता है अथवा उसके इस जन्म में ईमानदारी से निभाए गए कर्तव्य कर्मों सत्कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।
जब पुण्य जोर करता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है, विवेक आता है। पाप जोर उत्पन्न करता है तो आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, दुख बढ़ता है। पुण्य जोर करता है तो वैराग्य बढ़ता है, अनासक्ति बढ़ती है, सच्चाई बढ़ती है। कोई आदमी अभी तो सुखी है लेकिन बता सकते कि ये दुखी होने वाला है, क्योंकि उसके आचरण से पता चलेगा कि वो दुख का सामान ले रहा है कि सुख का ले रहा है। कोई अभी दुखी है लेकिन बता सकते कि ये सुखी होने वाला है, क्योंकि उसके कर्म भविष्य की खबर देते हैं। उसका चिंतन और उसका कर्म भविष्य की खबर देता है।
वजीर ने दृढ़ निश्चय किया, अब शेष जीवन में गुलाम या नौकर बनकर नहीं अपितु भगवान का भक्त बनकर भगवत भक्ति तथा आत्मचिंतन में ही बिताऊंगा। वजीर ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ईश्वरोन्मुख जीवन जीने लगा। आगे चलकर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्यत्व प्राप्त हुआ और वे ही महान भगवत भक्त भक्त कवि पंडित रूप गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए।
वही मंत्री स्वामी रूप गोसाई बन गया। कहां तो गुलाम होकर जा रहा था, एक भिखारी की बातचीत हृदय में लग गई। अपने को तो संत की भी नहीं लगती, अपना हृदय कितना सत्संग प्रूफ है। आपणु हृदय केवु सत्संग प्रूफ छे। पेलो भिखारण भिखारी ने कहे छे के जाओ भीख मांगवा, तो के अत्यारे आवी वरसाद में तो बकरू ए बाहर नथी निकळतू, कूतरू ए बाहर नथी निकळतू, तो हूँ सन करूँ, हूँ शू करवा भीख मांगवा जाओ, मैं क्यों भीख मांगने जाऊँ। अभी ऐसी वरसाद में तो वो जाए जिसको विषय विलास बहुत कुछ चाहिए और कोई गुलाम हो वही जाए। मैं गुलाम थोड़ी हूँ, मैं तो अपना भिक्षा मांगने का धंधा भी अपना ही करता हूँ, गुलाम थोड़ी हूँ। गुलाम जाए मालिक के बुलाने से अच्छा। गुरु ने बुलाया तो शिष्य आता है तो गुलाम नहीं होता है, शिष्य जब आता है तो उसको श्रद्धा और तपस्या होती है। जैसे हमको कोई गुरु का संकेत होता था और हम कठिनाई में भी चल देते तो वो गुलामी नहीं होती थी, वो तो स्वयं स्वीकार किया हुआ सेवा का महत्व होता है। लेकिन दुनवी चीजें मिले और मेरा प्रमोशन हो, मेरे को नौकरी चली न जाए, तो इस भावना से जो काम करते हैं वो गुलाम है। जो संसार को पाने के लिए तत्पर हैं वो गुलाम हो जाते हैं, जो ईश्वर को पाने के लिए कुछ भी तत्पर करे वो उनको तो तपस्या हो जाती। तो भिखारण को सुनाता है भिखारी और मंत्री ने सुन लिया और मंत्री के पैर डगमगाए और सोचा कि आयुष्य नष्ट हो रही है, कितना भी शरीर को खिलाओ पिलाओ घुमाओ वाहवा कराओ ये शरीर तो मर जाएगा, ईश्वर प्राप्ति क्यों ना करें। तो वही फिर चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन गया, रूप गोसाई के नाम से बड़ा सज्जन पुरुष बन गया। कहां तो एक राजा का मंत्री था और कहां एक संत का सत शिष्य बन गया रूप गोसाई चैतन्य महाप्रभु का। भिखारण ने भिखारिणी वार्तालाप थी असर थी ना आई आई सत्संग ने असर ना था एटलू बधु सत्संग प्रूफ हृदय है। मेरे को तो आज दोपहर को कहीं एकांत में जाने का तो पहले से ही था, कल रात को ही जाने का था, लेकिन फिर देर हो गई तो सोचा सुबह जाएंगे। तो सुबह जाने के विचार विचार में चलो फिर ऐसे बैठ गए कि उठने की इच्छा नहीं हुई। तो अभी भी सोचा कि संध्या यहीं कर ले ध्यान में, फिर सोचा कि कोई दूर से आए होंगे और हम नहीं जाएंगे तो दूसरे दिन भी लोगों को लगेगा बापू है कि नहीं, चलो जाके आते। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को सत्संग सुनाया तो राम जी जो प्रश्न कर सकते हैं वो साधारण आदमी तो नहीं कर सकता है, और उसका उत्तर जो वशिष्ठ जी दे सकते वो दूसरे की ताकत नहीं है। तो भगवान राम ने सवाल कर दिया कि प्रभु शरीर का खोराक तो अन्न है, अन्न फल जल आदि, और वो शरीर अपना नहीं है, वो तो मर जाएगा, तो अपना खोराक क्या है? बाप रे कैसा सुंदर प्रश्न है। अपन तो आत्मा है, नित्य है, और शरीर अनात्मा है, जड़ है, अनित्य है, प्रकृति का है, और हम चैतन्य हैं, पुरुष के हैं, परमात्मा का सनातन अंश है। तो शरीर का खुराक तो अन्न जल फल आदि है, इसको तो दिन रात गद्दार को खिलाते हैं, और ये कितना भी खिलाओ पिलाओ फिर भी इतना बेवफा है कि कभी खांसी तो कभी बुखार तो कभी ये तो कभी गड़पन, तो इस आखिर मरो शमशान में कुटी बाड़ो लो। वैसे हम ना कह के कांति जाए छे के मर्दू जाए छे, ले दिलीप जाए छे के नहीं आ तो मर्दू जाए छे, अने हाड़का ओड़खाए ने क्या कांति ना छे के दिलीप ना छे, अने घरे आवा ना दे के अब शुकन थाय घर बांध्यू छे आपणे केटला कोष का बाळा करीने घर बांध्यू छे, घर में आपणे हाड़का ना मुकाय लो। हाँ बे पांच वर्ष दस वर्ष में आऊ थी जवान तो भी आ सत्संग प्रूफ हृदय थयू के बापू आम वाट जुए कोई आवे तो आपी दऊं, कोई मलता ज नहीं, कोई पात्र मिले तो मैं दे डालू, मेरे पास तो बहुत खजाना है गुरु जी का, सबकी इच्छा तो है लेकिन इच्छा गर्भवती रहती है, बिना गर्भ की इच्छा नहीं होती। तो इच्छा के गर्भ में पुत्र है, परिवार है, धन है, संसार है, कि इच्छा के गर्भ में भगवत प्राप्ति है। अगर इच्छा के गर्भ में भगवत प्राप्ति है तो उसको भगवत प्राप्ति की प्यास को बढ़ा दो तो इच्छा का पेट फाड़ के भगवान प्रकट हो जाएंगे हृदय में, गुरु के हृदय से भी उछल कर वो दो वचन निकल जाएंगे, दृष्टि निकल जाएगी, काम बन जाएगा। मेरे गुरुदेव के पास बहुत लोग आते थे तो वो तो देना चाहते थे, लेकिन जिसके हृदय में तीव्र इच्छा होती उसी के लिए गुरु जी का विशेष कृपा उभरती है। तो आचरण भी देखते कि कितना तीव्र इच्छा है, कितना समर्पण है, कितना श्रद्धालु है, कितना गुरु को पटाने वाला हो, तो गुरु जान जाते हैं। तो भगवान राम ने पूछा कि शरीर का खुराक तो हम जानते हैं लेकिन हमारा अपने खुराक का, आत्मा का खुराक क्या? तो बोले उस आत्मा का खुराक है ध्यान। ध्यान से वो पुष्ट होता है। जप ध्यान, जप करते करते उसके अर्थ में लीन हो जाए, ध्यान में लगे। और ऋषि दयानंद कहते थे कि हर एक आर्य मनुष्य को, समझदार मनुष्य को 2 घंटा ध्यान रोज करना ही चाहिए, और लोग हर बार छोड़कर साधक बन गए उनको 4 घंटे ध्यान करना चाहिए तो ये आत्मा पुष्ट होगी, प्रकट होगा। और भगवान शिव का कई बार श्लोक सुनाया, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में योग की ध्यान की महिमा बताते, तो ध्यान का तो कितना महत्व है, लेकिन ही है, दिन पूरा कर देंगे। एक महीना खान पान सात्विक रखे और प्राणायाम अच्छी तरह से करे, ध्यान में बैठे तो कितना बुद्धि में रित भर जाएगा, सत्य भर जाएगा, बुद्धि सुविकसित हो जाएगी। लाखवां हिस्सा बुद्धि का विकास कर रहे वो बुद्धिमान कहलाते हैं, लाखवां हिस्सा। अगर ध्यान आदि करे तो कई हिस्से विकसित होते तो परमात्मा भी प्रकट हो जाए।
हे प्रभु, मैं प्रातःकाल 4 बजे उठकर आपका भजन करूं, सारा दिन आपका भजन करूं, भजन करते करते ही सोऊं, भजन करते करते ही उठूं, और जिनको भजन करने की गरज नहीं है, व्याकुलता नहीं है, वे छोड़ दे भजन और सोचें कि जब भगवान कराएंगे तब करेंगे। तो भगवान तो पता नहीं कब कराएंगे, उसका कोई हिसाब तो है नहीं, वे तो परम स्वतंत्र हैं। इसलिए दिल में व्याकुलता होनी चाहिए, वह समय कब होगा जब हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे। दिल में व्याकुलता का होना आवश्यक है। अपने को इतना ढालो कि क्षण भर भी भगवान के बिना व्यतीत न हो। रो भगवान के लिए, हंसो भगवान के लिए, चलो जैसे परिक्रमा कर रहे हैं, खाओ जैसे भगवान को भोग लगा रहे हों, सुनो जैसे भगवान का भजन हो, बोलो जैसे भगवान का प्यारा प्यारा नाम हो। अपने जीवन की एक एक क्रिया को, एक एक क्षण को भगवान से भर दो, आपको परमानंद की प्राप्ति होगी।
परमानंद, परमानंद उसको बोलते कि भगवान के दर्शन से परमानंद प्राप्त होता है, चला जाता है, लेकिन उस समय थोड़ी झलक आती है। लेकिन आत्मा का अनुभव हो तो फिर जैसा भगवान परमानंद में रहते हैं ऐसे अपन भी रहेंगे। परमानंद का मतलब हे नहीं होता है, परमानंद परमानंद होता है, वो तो जानते हैं जिनको साक्षात्कार होता है। नए नए को परमानंद की जरा मजा ज्यादा आ जाएगी, पुराना हो जाएगा तो जैसे नया दारू लिया जरा उछल कूद करता है, पुराना बचा लेता है, ऐसा परमानंद, परम आनंद को परमानंद बोलते हैं।
सर्वोत्तम क्या है? बुढ़ापा नष्ट करने वाली वस्तुओं में दूध और घी सर्वोत्तम है। बल और चेतना उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में शुद्ध वायु सबसे अच्छी है। स्नेह प्रीति उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में प्रसन्न करना सबसे बढ़कर है। पुष्टि करने वाले कारणों में मन की शांति सर्वश्रेष्ठ है। दुख देने वाले कारणों में लोभ सबसे बड़ा है। और सभी प्रकार के ज्ञानों में आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है।
देख ले, लोभ सबसे बड़ा खतरनाक, जिसके जीवन में लोभ आ गया सब पाप आ जाएंगे, सब टेंशन तनाव आ जाएंगे, बेईमानी कपट आ जाएगा, फिर वो कुल का भी नाश कर देता है लोभ। लोभ मोह, कुटुंब का मोह, ये सब, और स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा, आरोग्य के लिए दूध, ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान, उसी का इधर दिन रात पठन पाठन होता है। दुनिया के सभी ज्ञान छोटे हो जाते हैं, आत्मज्ञान इतना ऊंचा है। नारायण नारायण नारायण।
स्वास्थ्य की कुंजी प्रातः भ्रमण। संसार के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानों, विद्वानों, वैज्ञानिकों एवं हमारे ऋषि मुनियों का यह निश्चित और निर्विवाद सिद्धांत है कि प्रातःकाल की शुद्ध वायु में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।
अच्छा, शुद्ध वायु में घूमना और गर्दन पीछे दबोच के लंबे श्वास लेना, गर्दन आगे दबोच के 20 लंबे श्वास लेना, ये तो और भी अच्छा है। मिला दे,
समय सपाटे के साथ तेजी से चलना चाहिए। प्रातः सैर करने से आयु बल बुद्धि बढ़ते हैं। कब्ज और मंदाग्नि के रोगियों सभी के लिए स्वास्थ्यप्रद, बलप्रद, सात्विकतावर्धक यह प्रयोग आपके लिए तो विशेष विशेष लाभप्रद है। प्रातःकाल भ्रमण हमारे ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही परंपरा है। अपने पूज्य बापूजी भी नित्य प्रातः एवं सायं भ्रमण करते हैं। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य की कुंजी का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। शहरों में रहने वालों के लिए शुद्ध हवा प्राप्त करने का प्रातः भ्रमण ही तो एकमात्र साधन है। बाद में तो हवा में प्रदूषण बढ़ता जाता है। वैसे दिन के अन्य समय में किसी दिशा की हवा लाभदायक तो किसी दिशा की हवा हानिकारक मानी गई है, परंतु प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सभी दिशाओं की हवा निर्दोष एवं लाभप्रद ही होती है।
प्रातः समय के वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि हो तो बलवान।
पंचदशी में एक दृष्टांत है। एक राजा गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने गया। गुरु जी ने पूछा, तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? राजा बोला, रानी में है। गुरु जी ने कहा, तुम रानी का ध्यान करो। जब राजा रानी का ध्यान करने लगा, तब गुरु जी ने पूछा, रानी क्या है? राजा ने रानी के रूप, श्रृंगार आदि का वर्णन किया। गुरु ने कहा, यह तो पंचभूत है, इसे छोड़ो। उसमें जो जीवन तत्व है वह रानी है। राजा बोला, हाँ, प्राण रानी है। गुरु जी ने कहा, प्राण तो वायु है, उसमें जो प्रेम है वह रानी है। राजा बोला, ठीक है, उसमें जो प्रेम भरा मन है वह रानी है। गुरु जी, यह ठीक नहीं है, उसमें जो ज्ञान है वह रानी है। राजा बोला, ठीक है,
सुनो, यह ठीक नहीं, नहीं, यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे बढ़ो। यह ठीक नहीं, नहीं, यहाँ तक तो समझ गए, अब थोड़ा और गहरे में जाओ। और गहरे ज्ञान में चलो, और सार में चलो, और सार के तरफ चलो, गहरे में चलो।
गुरु बोले, तुम अब भी नहीं समझे, उसमें जो आनंद है वह रानी है। राजा बोला, ओह, मुझे उससे जो सुख मिलता है वही रानी है। गुरुजी बोले, उसमें जो अखंड सत्ता, ज्ञान एवं आनंद है वह रानी है, वही तुम हो। तुमने अपने विषय में अब तक विचार ही नहीं किया।
उसमें जो सुख है, अखंड तत्व है, नहीं, जो सुख है अखंड तत्व है, जो सुख है अखंड तत्व है, वो तुम्हारा आत्मा है। उस अपने आत्मा के विषय में विचार नहीं किया? जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है अपने मसूड़े के रक्त के स्वाद से, हड्डी में आरोपित करता है, ऐसे ही पुरुष स्त्री एक दूसरे में सुख का आरोप करते हैं। सुख अपने अखंड तत्व का होता है। सुख अपने चैतन्य अखंड तत्व का होता है। सुख की झलक अपने चैतन्य अखंड तत्व की होती है। अज्ञानतावश बाहर आरोपित करके जीव फंस जाते हैं। अब दिए में सुख नहीं है, पतंगिया आरोपित करता कि यहाँ सुख है, तो अपने आरोप आरोप से फिर सुख का थोड़ी मजा आती है और फिर बदले में जलता है मरता है। ऐसे ही पुरुष आरोप करता कि पत्नी में सुख है, पत्नी आरोप करती है पुरुष में सुख है, फिर मिलते जुलते और खाली होते और ठूस बन जाते हैं। और क्या होता है, धोखा ही धोखा खाते और क्या है। नारायण नारायण, और पतंगिया भी बार बार, एक बार धोखा खाया जला फिर मूर्छित हो गया, जरा होश में आया फिर वही करता है, फिर वही करता है, जब तक मरता नहीं तब तक वही करता है। ऐसे ही लोग भी जब तक शमशान नहीं जाते तब तक धोखे का ही मजा ले लेके जल्दी मुर्दे बन जाते, जल्दी बूढ़े बन जाते, बीमार बन जाते। लेकिन अपन तो सत्संग प्रूफ है, कोई असर नहीं होती, क्या पता क्या है। वो तो भिखारी की बात असर हो गई, मेरी बात असर नहीं होती क्यों। उस मंत्री का पुण्य परिपक्व था, पका फल था, एक जरा सा झोंके से आ गया। नारायण नारायण नारायण, हे राम जी, युवावस्था में वैराग्य नहीं, जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही संसार में उलझे हुए को विवेक वैराग्य होना कठिन है। लेकिन अतिवृष्टि पड़ती है मरुभूमि में तो वहाँ भी वृक्ष हो जाते हैं, ऐसे ही अति सत्संग और सुमरण हो तो फिर वहाँ विवेक वैराग्य जग जाता है। इसलिए सत्संग सुमरण बढ़ा देना चाहिए।
स्वातंत्र का मार्ग, इंद्रियों पर और मन पर विजय पाने की चेष्टा करो, अपनी कमजोरियों से सावधान रहो, धीरज के साथ परमात्मा पर भरोसा रखकर इंद्रियों के बुरे इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोको, मन को प्रभु चिंतन या सत चिंतन के कार्य में रोककर उसे कुविषयों के चिंतन से हटाओ। जब आपके शरीर मन और वाणी तीनों शुद्ध होकर शक्ति के भंडार बन जाएंगे, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होकर महाशक्ति की सच्ची उपासना कर सकोगे। याद रखो, जिस पवित्र आत्मा पुरुष के शरीर इंद्रियां और मन अपने वश में है और शुद्ध हो चुके हैं, वही स्वतंत्र है।
हाँ, वही स्वतंत्र है, वही ज्ञानी है। वो ऐसे बस पढ़ लिया थोड़ा और अपने को घन ज्ञानी मान लेते, ऐसा नहीं होता। हाँ, ठान ले कि नहीं खाना है तो नहीं खाना, ये नहीं करना था। मन जैसे स्टीयरिंग और ब्रेक पर कंट्रोल है, वही वास्तव में ड्राइवर है। ऐसे ही मन पे बुद्धि पर अपना नियंत्रण है तो वही वास्तव में स्वतंत्र है। गाड़ी पर नियंत्रण है फिर वो गाड़ी कहीं भी ले जाए, ऐसे जिस जो जिसने जीत लिया है मन बुद्धि, वो फिर कहीं भी संसार में, ये वो वशिष्ठ को सब बैठे थे फिर भी स्वतंत्र है। और कई कुंवारे हैं वे भी परतंत्र हैं, देख देख के साले खाली होते, एक दूसरे को देख देख के झाड़ते जाते, तो परतंत्र है। विकारों में गिरना परतंत्रता है, विकारों का उपयोग करना स्वतंत्र।
जो किसी भी नियम के अधीन न रहकर शरीर का, इंद्रियों का और मन का गुलाम बना हुआ मनमानी करना चाहता है, कर सकता है या करता है, वह तो उच्छृंखल है। उच्छृंखलता से तीनों की शक्तियों का नाश होता है और वह फिर महाशक्ति की उपासना नहीं कर सकता। महाशक्ति की उपासना के बिना मनुष्य का जन्म एवं जीवन व्यर्थ है और पशु से भी गया बीता है।
महाशक्ति वह आत्मा परमात्मा है, संयम करेगा तभी महाशक्ति की उपासना होगी और उपासना करेगा तो महाशक्ति का विकास होगा। चटोरापन से तो काम नहीं चलेगा, तत्परता का। लाखवा हिस्सा विकसित हुआ बुद्धि का, अभी कितने हिस्से बाकी, अभी 10-20 हिस्से भी विकसित कर दे तो महान आत्मा बन जाए। नारायण नारायण नारायण।
हे राम जी, आत्मदेव की पूजा सुनो। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होगे, तब और पूजा तुमको सूखे तृण की तरह तुच्छ प्रतीत होगी। दान भी आत्मदेव को ही करना है, सो बोध से करने योग्य है। वैराग्य, धैर्य और संतोष बोध का कारण है। यथा लाभ में संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो। इन साधनों से जब बोध रूपी सूर्य का उदय होगा, तब द्वैत रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा और ज्ञान रूप ही भासित होगा। फिर जो ज्ञान उपजा है वह भी शांत हो जाएगा। इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्मपद को पाओ।
उसी आत्मदेव की पूजा करो जिससे आत्मपद पाओ। आत्मदेव की पूजा से और पूजाएं सब सूखे तिनके जैसी लगेंगी। वो मंदिरों में इधर उधर पूजा करते क्या क्या करते, वो सब जब तक आत्मदेव की पूजा का तरीका नहीं मिला तब तक केजी में घूमते हैं बेचारे। 5 साल का बच्चा 3 साल का हो केजी में रहे, 5 साल का हो केजी में रहे, कोई हरकत नहीं। लेकिन 80 साल के बूढ़े भी केजी में ही पड़े थे, कैसा है? पहली क्लास में ही पढ़े, बाल मंदिर में ही पड़े रहते, कैसा है? गुरु के बिना सब ऐसे ही बिचारे, सारी उम्र उसी बाहर की पूजा में लगे। आत्मदेव की पूजा करो तो बाहर की पूजा सूखे तिनके की नहीं लगेगी। वशिष्ठ जी बोलते, ये कर्मकांडी लोगों को समझ में नहीं आता। अतः गणपति पूजा करिषे, अतः ये करिष्यामा। वो कर्ता बनते 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 थक के मर जाते। कर्मकांडी ब्राह्मण लोग कर्ता बन बन के थक के मर जाते। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वात्मन मन्यते यदा। अष्टावक्र कहते हैं अकर्ता अभोक्ता अपने आत्मा को जब मानेगा तो सारे कर्म बंधन छूट जाते। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। ये आत्मदेव की पूजा अनुपम है, बहुत दिव्य है। संसार के लिए इतनी मजूरी करते, खाली 2 घंटे रोज ध्यान करे तब भी संसार तो पीछे पीछे आ। ये आत्मदेव की ऐसी पूजा है दिव्य। ओम ओम ओम।
राम जी, आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए, इसलिए आत्मविचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथालाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। इन फूलों से आत्मा की पूजा करनी चाहिए।
आत्मदेव की पूजा क्या है? यथालाभ में संतुष्ट रहो, संतों की संग करो और चित्त में विश्रांति पाओ। यही आत्मदेव को फूल अर्पण किए। बाहर के फूल तो कुमला भी जाए, कभी मिले कभी न मिले, ये तो तैयार मौजूद। ऐसी अंतरंग आत्मदेव की पूजा है। ये पूजा जिसको मिल गई उसके लिए बाहर के कर्म कांड सब सूखे तिनके किनारे हो जाते। शुद्ध हृदय विवेक विचार संतों का सुन भगवान नाम सुन। ओम ओम नारायण नारायण। आज आनंद आ रहा है सबको है? हाँ, ये आत्मदेव की पूजा देख रहे क्रिया की जाती है। कमाना खाना लेना देना कुछ पाने के लिए कर्म किए जाते हैं। तो कर्म में सात्विक कर्म राजस कर्म तामस कर्म जैसे कर्म ऐसा कर्ता को फल होता है देर सवेर चाहे एक जन्म में हो चाहे दस जन्म के बाद। एक होता है कर्म, दूसरी होती है क्रिया। जैसे रक्त का संभ्रमण हो रहा है, श्वासोश्वास चल रहा है, आंख के पलकारे गिर रहे और स्वाभाविक क्रिया हो रही है, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं, वो सहज में हो रही। तीसरी होती है लीला। लीला भगवान का जो भी अवतरण है और जो चेष्टा है जो क्रिया कर्म है वो सब लीला में गिना जाता है। लीला होती है सत्यता को चेतनता को आनंदता को प्रकट करने के लिए। रामावतार राम राज्य के बदले राम वनवास हो गए, हाय सीते हाय लक्ष्मण, ये सब लीला है। उखली से बंध जाना लीला है, गाय चराना लीला है। ये अवतार जो करते वो लीला होती। एक होते नित्य अवतार, दूसरे होते नैमित्तिक अवतार। ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्म लोक में स्थित ब्रह्मवेता महापुरुष कभी कभी सृष्टि की स्थिति देखकर उनको करुणा उपजती है तो चलो फिर इन बेचारों को जरा ठीक ऊंचे रास्ते लगा दें। अथवा तो बहुत कुछ विकृतियां बढ़ जाती है, बहुतों हृदयों की पुकार होती है और पृथ्वी गौ का रूप ले जाकर भगवान को प्रार्थना करते तो जो आते भगवान होता है नैमित्तिक अवतार। कंस का निमित्त लेकर कृष्ण आए, रावण का निमित्त लेकर राम आए, प्रहलाद का निमित्त लेकर नरसी आए, बलि का निमित्त लेकर वामन प्रकटे, वो नैमित्तिक अवतार होता है। तो जिस ब्रह्म परमात्मा में भगवान अकर्ता अभोक्ता है उसी ब्रह्म परमात्मा में ज्ञानी महापुरुष भी होते हैं। वो ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीवन मुक्त होकर ब्रह्म में विलय हो, दूसरे ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्म लोक तक की यात्रा में फिर ब्रह्मा जी जब मुक्त होंगे तब। तो वो ब्रह्म लोक निवासी जो ब्रह्मवेता महापुरुष है वो दया करके जब आते हैं तो वो होता है कारक पुरुष अवतार। तो उनके द्वारा भी प्रकृति में कभी आश्चर्य हो जाए चमत्कार हो जाए ऐसी लीलाएं होती। चमत्कार तो कई तरीकों से होता है, योग सिद्ध महापुरुष भी चमत्कार करते हैं, तपस्वी भी चमत्कार करते हैं, धूतारे भी चमत्कार दिखा देते हैं, धूर्त लोग, वो अलग बात है। भगवान की भक्ति के तो भगवान की कृपा से भी चमत्कार होता है। नामदेव ने आंसू बहाए कि मेरी दी सिद्धियों का पानी तुमको कैसे पिलाऊंगा, तुम्ही को तो प्यास लगी है, माजा विठला माजा पांडुरंगा। तो भाव में आए तो दो आंसू कुएं में गिर और कुआ भर गया और नामदेव ने चुल्लू भर के भगवान को भोग लगाया। ज्ञानेश्वर योग बल से कुएं में गए और पानी ले आके बोले लो ठाकुर जी को पिलाओ। तो बोले तुम्हारी सिद्धि के बल का मैं मेरे ठाकुर जी को क्यों पिलाऊं, मेरे ठाकुर जी क्या समर्थ नहीं है क्या, माजा विठला तुमको सिद्धि के बल का पानी क्यों पिलाऊं, तुम सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे भाव में आ गए तो भक्त की भावना से चमत्कार होता है। भावना शुद्ध हो तीव्र हो तो चमत्कार का मतलब है कार्य कारण नियम से भी पर कुछ घटना घट जाए। अनुकरण आज अनुकरण आज अनुकरण आज, जैसे शिवाजी महाराज दोपहर को समर्थ रामदास से आज्ञा लेके जा रहे थे तो रामदास ने कहा आप कब जाओगे कब पहुंचोगे भोजन करके जाओ। बोले गुरुजी मैं अकेला तो नहीं हूँ, सारा झमेला है, सारा झमेला है मेरे साथ, इतने लोग हैं। अरे बोले कोई बात नहीं, ये पहाड़ है ना वहां से पत्थर हटा देना, अंदर जाएगा सब व्यंजन तैयार मिलेंगे, सब खा लेंगे, नहीं खुटेगा। खाते गए खाते गए खाते गए, आश्चर्य हुआ। तो अब कार्यकारण का नियम कौन कौन लाया रसोईया और कौन किसने पकाया किसने गर्मा गर्म रखा। फिर बोले गुरु जी ये कैसा, तुकाराम को पूछना, तो तुकाराम ने भी ऐसा दिखा दिया। भरद्वाज के आश्रम में भरत जी को भी ऐसा मिला, राम जी को वापस लौटाने जा रहे थे। तो राजा अकबर के दरबार में तानसेन था और तानसेन के संपर्क में अकबर ने ये बात सुनी कि हमारे गुरु जी हैं हरिदास महाराज। बोले एक बार हरिदास महाराज के दर्शन कराओ, वो कैसा गाते। बोले वो तो उनकी बात निराली। तो हरिदास महाराज के दर्शन किए और हरिदास महाराज का भजन सुनकर अकबर धन्य धन्य हो गया। हरिदास महाराज के गुरु थे सच्चिदानंद महाराज, वो कहीं जंगल में गए थे तो दूसरा भी एक साथी था विद्वान पढ़ाने वाला, उलझ गए भूखे प्यासे मंदिर में पड़े रहे। तो एकाएक देखा कि एक दोने में पांच पेड़े, तानसेन के दादा गुरु। अब देखा दो आदमी पांच पेड़ों से क्या होगा, तो मंदिर के ऊपर से आवाज आई खा लो चिंता मत करो नहीं खुटेगा। वो पांच पेड़े खाते गए लेकिन पांच पेड़े के पांच पेड़े दोने में। फिर वाराणसी गए और वहां छात्रों में बांटे, फिर भी पांच पेड़े दोने में पांच के पांच, देते जाओ फिर पांच होते जाए। जितना बांटना था बांट बांट के थके, आखिर थके तो माफी मांग के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। तो ऐसी जो कार्य कारण को लात मार दे ऐसी जो व्यवस्था है, जैसे नामदेव गोदावरी में गए और मुट्ठी भर के ले आए, बोलो तुम्हारा कौन सा पारस है, जिस पत्थर को लोहा लगाओ तो सोना बन जाए, तो इसको चमत्कार बोलते। तो ईश्वर की सत्ता से ईश्वर भी करते हैं और कारक पुरुषों के द्वारा भी प्रकृति ऐसी लीला कर देती। ये सब बताने के पीछे भावार्थ है कि मनुष्य में ये सारी योग्यताएं बीज रूप में छुपी है। जैसे सांदीपक के गुरु ने कहा सांदीपनी को कि तुम तो मेरा शिष्य है, इतना बुद्धिमान इतना विद्वान नहीं है, इतना तीव्र विद्यार्थी नहीं, लेकिन गुरु भक्ति है तो तुम गुरुकुल चलाओगे अपना, तो तुम तो मेरे शिष्य हो लेकिन भगवान कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो भगवान को चेले का चेला बनाने की योग्यता भी मनुष्य में भगवान ने दी है। इसलिए मनुष्य अपनी सात्विक योग्यताओं का विकास करे। झूठ कपट बेईमानी विलास और पाश्चात्यकरण से अपने हृदय को मलिन करके फिर पाश्चात्य के लोग तो बहुत बेचारे प्रेत योनि में और योनियों में भटक रहे, तो अपने को विदेशीकरण के प्रभाव से बचाकर अपना आध्यात्मिक जन्म सिद्ध अधिकार जो भारत में जन्मे है, खून में संस्कार है, राम नाम के भगवान नाम के आदि के, उसका फायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी शाश्वत प्रगति करनी चाहिए। धन दौलत और कुर्सी से शाश्वत संबंध का प्रगति का कोई संबंध नहीं है। कुर्सी कितनी भी बड़ी मिल जाए लेकिन वो प्रगति नश्वर है। धन कितना भी मिल जाए, स्वास्थ्य कितना भी बढ़िया हो जाए लेकिन प्रगति नश्वर है। शाश्वत प्रगति जीवात्मा अपनी कर सकता है। तो अपने कर्मों को, अपनी क्रिया को भगवत लीला के अनुकूल बना दो। तो जैसे शराबी दूसरे को शराबी बनाना चाहता है, ऐसे भगवत लीला दूसरे को भगवत सुख से संपन्न करना चाहते। तुझे भगवान ने गमे ते मारा थी था है। तो इसलिए सुबह उठकर सवारे उठी ने थोड़ी बार भगवान ने प्रार्थना नहीं स्तुति करो। प्रार्थना में और स्तुति में फर्क है, समझ लेना। स्तुति में भगवान की महत्ता है और अपना प्रेम है, और प्रार्थना में अपनी इच्छा है, अपनी लघुता है और भगवान की सामर्थ्यता है। तो स्तुति में प्रार्थना में ही फर्क है। ऐसे ही जप में और ध्यान में, जप करने से पांचों शरीर पर अच्छी असर पैदा होती है 84 नाड़ियों पर, लेकिन जप करते करते उसके अर्थ में ध्यानस्थ हो जाए तो बुद्धि में परमात्मा सत्य भरता है, रितम भरा प्रज्ञा होती है। तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना चाहिए, नहीं तो बाकी का कितना भी विकास किया वो विकास के नाम पर अपने आपका तो विनाश ही है। जो शरीर छोड़ के मरना है उसका कितना नाम हुआ, उसको कितना एयर कंडीशन में रहने को मिला, कितनी गाड़ियां मिली, लेकिन समय का तो विनाश हुआ, अपनी योग्यता का तो विनाश हुआ। तो राजे महाराजे राजपाट करके मन चाहे भोग भोग के जब विवेक जगता था तो सोचते थे कि ततः कि आखिर क्या छेवटे शु, जिस शरीर को ऐश आराम कराया जय जयकार किया वो तो जला देंगे, समझाए छे। तो जो जल जाएगा उसके पीछे मैं इतने कर्म करूं और कर्म के बंधन में पड़ूं। राजा नृग क्रिकेट हो गए, राजा अज अजगर हो गए, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट, वहां की मीडिया के आधार पर आपको पता होगा कि प्रेत होके व्हाइट हाउस में कभी कभी दिखाई देते। तो क्या हुआ, सेठ बनकर, नेता बनकर, बड़ा आदमी बनकर भी अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं किया तो अपना विनाश ही तो हुआ, और क्या हुआ। तो भगवान कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु, मनुष्य अपने आप का बंधु है, आत्मैव रिपुरात्मना, अपने आप का शत्रु भी है। अगर अपने को खुराक खिलाता है तो अपना बंधु है, और अपने को खुराक नहीं खिलाता है तो अपने आप का शत्रु है। तो यह सवाल भगवान राम जी जैसे महाप्रज्ञा के धनी पूछ सकते, दूसरे की तो बुद्धि नहीं। रामचंद्र जी ने पूछा वशिष्ठ जी को कि गुरुवर, मुनि शार्दुल, शरीर का आहार तो हम जानते हैं, करते कराते हैं शरीर को आहार, लेकिन ये शरीर का आहार ये अपना आहार नहीं है। शरीर का तो अन्न फल दूध मक्खन आदि जो भी शरीर के भोजन को तो हम जानते हैं, जो हम नहीं थे पहले और बाद में नहीं रहेंगे इसका तो आहार जानते हैं, इसको तो कराते हैं, लेकिन हमारा खुराक क्या है गुरुदेव, कितनी ऊंची बुद्धि है ऊंचा प्रश्न है। जो आप छोड़ जाएंगे वो आप नहीं है ये पक्का कर लो, इससे बहुत लाभ होगा। जिसको छोड़ जाओगे ना, ये पूनम मोहन ये वो जो भी नाम रखे से, इसको आप छोड़ देंगे तो जो छोड़ देने वाला शरीर है उसको तो आहार कराते हैं, उसका तो घर बनाते कपड़े पहनाते हैं, उसको तो सुबह से शाम तक उसकी मजूरी में लगे हैं, जिसको जला देना है दफना देना है। लेकिन हमारा हमारे स्व का खोराक क्या है? हम स्व क्या है? बोले स्व हो आत्मा। जैसे मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं बच्चा हूं, मैं किशोर हूं, मैं कुमार हूं, मैं जुआन हूं, मैं बूढ़ा हूं, तो हूं तो वही का वही और बाकी की अवस्था बदल गई। तो जो हूं जिस सत्ता से होता है वो आत्मा है, तुम अपने चैतन्य आत्मा है, जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, हाथ जड़ है, चैतन्य तुम हो, मन के विचारों को जानने वाले तुम हो। तो उस आत्मदेव की उपासना करो, उस आत्मदेव की पूजा से और पूजाएं और उपासनाएं और उपलब्धि सूखे तिनखे जैसी तुमको लगेगी। उस आत्मदेव का जो रस आएगा, जो वैभव आएगा, जो सामर्थ्य आएगा, वो तुम्हारे इस दुनिया के वैभव सामर्थ्य और रस उसके आगे सूखे तिनखे जैसे लगे। कहां नाली का पानी और कहां गंगा जल। इस प्रकार उस आत्मदेव की उपासना करो, आत्मदेव की पूजा करो। उस पूजा के लिए फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए, धूप भी चाहिए, दीप भी चाहिए। तो राग और द्वेष में अपने को न खपाकर, राग प्रेरित कर्म द्वेष प्रेरित कर्म नहीं, समता से जो कर्म करते हैं वह उस देव की पूजा है। और वो देव ध्यान से प्रसन्न होता है। भगवान नाम जप करते उसके अर्थ में फिर ध्यान में उस देव की उपासना होती, उस देव का भोजन है ध्यान। भगवान शिव ने कहा है पार्वती, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्माद् ध्यानम समाचरेत। श्री कृष्ण ने गीता में 64 बार योग शब्द का उच्चारण किया। ऋषि दयानंद कहते हैं कि आर्य को, समझदार मनुष्य को 2 घंटे रोज उस परमात्मा ध्यान में गुजारने चाहिए। 22 घंटे शरीर की चाकरी में लगते हैं, सोना भी तो इसकी चाकरी है, तो 2 घंटे कम से कम अपने लिए तो रखो। गाड़ी के लिए ड्राइवर 24 घंटे रखे तो तुम मूर्ख है, अपने लिए भी तो रखे। तो ये अपने आत्म परमात्मा के चिंतन में सत्कर्म करेंगे, विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, तब नश्वर प्रवृत्ति से समय बचाकर शाश्वत परमात्मा के ध्यान में लगेंगे। ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यश्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। उस परमात्म देव को ध्यान से संतुष्ट करो, अर्थात अपने आप को तृप्त करो।